ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा ने लोक सेवा आयोग विधेयक 2076 को सर्वसम्मति से किया पारित। नेकपा स्थायी कमेटी की कल होने वाली बैठक में दोनों अध्यक्षों द्वारा किया जाएगा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम अंतर्गत खर्च के लिए बाकी रहे रकम को कोरोना नियंत्रण और इलाज में खर्च करने का स्थानीय तहों को सरकार ने दिया निर्देश। काठमांडू घाटी में बाहरी जिलों से प्रवेश करने वाले जिस किसी को भी 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रखने के लिए घाटी के तीनों जिला प्रशासन को गृह मंत्रालय ने किया परिपत्र। और विश्वभर कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या पहुंची 4,75,000 से अधिक। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने लोक सेवा आयोग विधेयक 2076 को सर्वसम्मति से पारित किया है। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री डॉ शिव माया तुम्बाहांभे ने विधेयक को पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से बैठक ने पारित किया। बैठक के विषय में उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री डॉ तुम्बाहांभे ने विश्वास जताया कि संघीय निजामती सेवा को स्वच्छ निष्पक्ष बनाते हुए सार्वजनिक सेवा को चुस्त और पारदर्शी बनाने में विधेयक महत्वपूर्ण रहेगा। इसी तरह आज की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शिव माया तुम्बाहांभे द्वारा प्रस्तुत नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को स्वीकृत किया है। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति का प्रतिवेदन सहित संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह अंतर संबंध व्यवस्थापन विधेयक 2076 तथा संघ प्रदेश और स्थानीय तह तथा अंतर संबंध विधेयक 2077 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक के विशेष समय में सांसदों ने समसामयिक विषयों पर सरकार और सदन का ध्यान आकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ 17 गति के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने कहा कि जनता में भ्रम फैलाने के हिसाब से संसद में अपनी अभिव्यक्ति रखना उचित नहीं है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराय द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपि अधिकार पहला संशोधन विधेयक 2076 को विधायन व्यवस्थापन समिति में भेजा है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक इसी आषाढ़ 11 गते दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की स्थायी कमेटी बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बुलाई गई बैठक में नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पार्टी के दूसरे अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। बैठक में स्थायी कमेटी के 45 सदस्यों सहित आमंत्रित सदस्यों के तौर पर अनुशासन लेखा निर्वाचन आयोग सलाहकार परिषद और ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मंच के संयोजकों की भी उपस्थिति रहेगी। गृह मंत्रालय ने बाहर से काठमांडू घाटी प्रवेश करने वाले लोगों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था मिलाने के लिए तीनों जिलों के प्रमुख जिला अधिकारियों को परिपत्र किया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के लिए जारी किए गए गाइडलाइंस के मुताबिक काठमांडू घाटी आने वाले लोगों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रखने और सिर्फ लक्षण देखे जाने पर अस्पताल जाने की व्यवस्था करने के लिए गृह मंत्रालय ने काठमांडू भक्तपुर और ललितपुर के प्रमुख जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। सरकार ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम के बाकी रुपए को कोविड-19 के नियंत्रण और इलाज के लिए उपयोग करने का स्थानीय तहों को निर्देश दिया है। इस बात की जानकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के प्रवक्ता बसंत अधिकारी ने दी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। अब वक्त है एक छोटी से व्यावसायिक विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ
1498 फोन गर्नुस्।
समस्या पोस्टपेडमा नि आयो
1498 फोन गर्नुस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेडको पुक नम्बर पनि चाहिए थियो,
त्यसको लागि पनि 1498 फोन गर्नुस्।
नेपाल टेलिकमको जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कुनै पनि समस्या आएमा जे जे सोध्न मन छ 1498 फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। आज अतिरिक्त 538 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 10,099 पहुंची है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ जागेश्वर गौतम ने इस बात की जानकारी दी। इसी तरह देले की दुल्लू नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के 45 वर्षीय पुरुष की कल कोरोना की वजह से मौत होने के बाद नेपाल में कोरोना के संक्रमण के बाद मरने वालों की संख्या 24 पहुंची है। इसी तरह आज अतिरिक्त 76 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने के बाद अब तक और संक्रमण से मुक्त होकर घर पहुंचने वाले लोगों की कुल संख्या 2224 पहुंची है। नवलपरासी पूर्व की बिनी त्रिवेणी गांवपालिका में करंट लगकर आज दो लोगों की मौत हुई है, जबकि अन्य एक व्यक्ति घायल हुए हैं। मरने वालों में स्यांगजा चापाकोट नगर पालिका 6 के 32 वर्षीय भरत थापा और नवलपुर की बिनी त्रिवेणी 5 धुरकोट देवराली के 17 वर्षीय आशीष विगा शामिल है। पर्वत की कुशमा नगर पालिका 3 दुर्लुंग में बीते जेठ 31 को आई भूस्खलन से विस्थापित हुए लोगों को गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त राहत देने के साथ ही पुनर्स्थापना करने का निर्णय किया है। इस बात की जानकारी मंत्रालय के आपदा व्यवस्थापन महाशाखा के उपसचिव गणेश विक्रम साही ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 92,50,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 49,83,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, वहीं 4,75,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 23,95,000 से अधिक हो गई है। इनमें 10,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमण का मामला यही है। साथ ही यहां सबसे ज्यादा 1,22,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा ने लोक सेवा आयोग विधेयक 2076 को सर्वसम्मति से किया पारित। नेकपा स्थायी कमेटी की कल होने वाली बैठक में दोनों अध्यक्षों द्वारा किया जाएगा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत खर्च के लिए बाकी रहे रकम को कोरोना नियंत्रण और इलाज में खर्च करने का स्थानीय तहों को सरकार ने दिया निर्देश। काठमांडू घाटी में बाहरी जिलों से प्रवेश करने वाले जिस किसी को भी 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रखने के लिए घाटी के तीनों जिला प्रशासन को गृह मंत्रालय ने किया परिपत्र। और विश्वभर कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या पहुंची 4,75,000 से अधिक। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभरात्रि।